ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश में संघीय संसद की दोनों सदनों की चालू अधिवेशन का अंत। नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक में पार्टी में दिखे विवादों के समाधान के लिए शीर्ष नेताओं द्वारा किया गया विचार विमर्श। आज पुनः 664 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। और म्यांमार के कचिन प्रदेश में भूस्खलन के कारण 126 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंत्रिपरिषद की आज की बैठक की सिफारिश पर संघीय संसद की दोनों सदनों के चालू अधिवेशन का आज अपराह्न 5 बजे अंत किया है। राष्ट्रपति भंडारी ने संघीय संसद की दोनों सदनों के चालू अधिवेशन को अंत किए जाने का पत्र संघीय संसद के महासचिव को भेजा था। बता दें कि सरकार की नीति तथा कार्यक्रम और आर्थिक वर्ष 2077-78 का बजट चालू अधिवेशन द्वारा पारित किया जा चुका है। सरकार ने वैदेशिक रोजगारी में जाने वाले नेपाली नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड की पालना करने की शर्त पर श्रम स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद के बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता समेत रहे अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने बताया कि विश्वव्यापी रूप में महामारी के रूप में ले चुकी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्थगित की गई श्रम स्वीकृति की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिमों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण के आधार पर जिला कोरोना संकट व्यवस्थापन केंद्र ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के साथ समन्वय करते हुए जिले के संपूर्ण भूभाग अथवा कुछ क्षेत्रों को बंद या सील करने, आगामी श्रावण 7 गते तक मंगलवार मध्यरात तक नेपाल प्रवेश करने वाली सभी प्रवेश बिंदु से होने वाली यात्रियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में बैठक ने नेपाल आने वाले व्यक्तियों के हक में संबंधित देशों में रहे नेपाली नियोग की सिफारिश पर ही स्वीकृति देने, यात्रियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा मास्क, सैनिटाइजर आदि स्वास्थ्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बैठक ने विदेशों से लौटे यात्रियों को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से होल्डिंग सेंटर तक ले जाने के लिए नेपाली सेना की सवारी साधनों को प्रयोग करने और इसके लिए आवश्यक ईंधन का खर्च सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक आज भी विभिन्न कार्यसूची में ही केंद्रित होकर कुछ ही देर में स्थगित हो गई। बैठक के पश्चात संचार कर्मियों से की गई बातचीत में नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने बताया कि आगामी 2 दिनों तक होने वाली बैठक में पार्टी की एकता के विषय में विचार विमर्श की जाएगी। आज की बैठक में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने कार्य व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने दी। नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक 20 गते दोपहर 11 बजे होगी। आज पुनः 473 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही नेपाल में अब कुल संक्रमितों की संख्या 14,519 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की आज की नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि आज पुनः 364 पुरुषों और 109 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 12,636 पुरुषों में 1,883 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ के थाहैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विभिन्न विषयों के दो विधेयकों को पारित किया है। प्रधानमंत्री की ओर से अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय सभा से पारित प्रतिनिधि सभा में भेजी गई संघ प्रदेश और स्थानीय तह अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक 2077 को प्रतिनिधि सभा के जरिए संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी तरह मंत्री डॉ खतीवड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित की गई प्रतिनिधि सभा में भेजी गई नागरिक लगाने कोष दूसरा संशोधन विधेयक 2076 को प्रतिनिधि सभा के जरिए किए गए संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित किए जाने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन मंत्री बसंत कुमार निंगवांग ने अभिलेख संरक्षण पहला संशोधन विधेयक 2077 सभा समक्ष पेश किया। संघीय संसद का जारी अधिवेशन अचानक अंत किए जाने के विषय को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने गंभीरतापूर्वक लिया है। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा द्वारा आज जारी किए गए विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि कोरोना की वजह से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रस्तुत संकल्प एमसीसी आदि अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को अंतिम रूप देने से पूर्व ही अधिवेशन का अंत किया गया, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है। 12 में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 10 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में कलैया उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 12 सितलपुर के 35 वर्षीय आशा देवी महतो, 45 वर्षीय हलीमा खातून, फेटा गांव पालिका की 30 वर्षीय इंदु देवी महतो और 40 वर्षीय सुनारपति देवी महतो शामिल हैं। इसी तरह आज ही सरलाही में बिजली के गिरने से एक व्यक्ति की मौत होने के साथ ही 2 लोग घायल हो गए हैं। बिजली के गिरने से गांव पालिका 10 के 18 वर्षीय छोटू पासवान की मौत हो गई है, ये जानकारी पुलिस ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से मचे हाहाकार के बीच म्यांमार में भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। उत्तरी म्यांमार के कचिन प्रदेश के पेकान इलाके में स्थित जड़ खदान में भूस्खलन होने के कारण 126 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को हुए इस हादसे में कम से कम 126 शव अब तक बरामद किए गए हैं, वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं। साइट पर अभी भी लापता लोगों के लिए बचाव कार्य जारी है। वहीं विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,08,73,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि करीब 60,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त होकर घर वापस लौट चुके हैं। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत होने वालों की संख्या 5,20,000 से अधिक हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,30,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 27,97,000 से अधिक हो चुकी है। रूस में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 9,600 से अधिक पहुंच गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 6,61,000 से अधिक हो गई है। इसी तरह ब्राजील में कोरोना वायरस से मृत्यु होने वालों की संख्या 60,000 से अधिक हो चुकी है और कुल संक्रमितों की संख्या 14,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 6,12,400 से अधिक पहुंच गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश में संघीय संसद के दोनों सदनों की चालू अधिवेशन का अंत। नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक में पार्टी में दिखे विवादों के समाधान के लिए शीर्ष नेताओं द्वारा किया गया विचार विमर्श। आज पुनः 664 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि और म्यांमार की कचिन प्रदेश में भूस्खलन के कारण 126 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।